अच्छा, ये हम किसका कलाम पढ़ रहे हैं? अल्लाह का, ठीक है। ये बात कलाम पढ़ने के दौरान भी याद रहनी चाहिए। और अल्लाह कौन है? मेरी और आपकी अकल क्या है? कुछ भी नहीं। वो जो अलीम है, हकीम है, खबीर है, उसकी दी भी कलाम को, उसके बताए हुए अहकाम को हम जानने के लिए जा रहे हैं। तो ये बात जहन में रखते हुए आज की आयात को पढ़िएगा, अपनी अकल को सामने ना रखिएगा, ठीक है? कि मैं तो ये समझती हूँ, और मैं तो, मेरा तो ये ख्याल है, और ये कैसे फिर हो गया, वो क्यों ऐसे हो गया। ये जहाँ पे अहकाम की बात आती है और कोई चीज़ें हमें पसंद नहीं आती, तो फिर हम उन पे नाक मुंह चढ़ाने लगते हैं। अल्लाह के अहकामात को समझना व अताना कह के कबूल करना होता है। सहाबा कराम को कोई बात नहीं समझ आती थी तो आपसे पूछते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि पिछली कौमों की तरह ना हो जाना, तुम ये को समझना व अताना, आमन्ना व सदकना, ठीक है? तो आपने भी ऐसे ही कहना है। कुरान पाक के तालिबे इल्म के अंदर कम अज़ कम इतना बड़ा ये हौसला होना चाहिए कि कोई चीज़ उसके दिल को नहीं भी भा रही, तो तब भी चूंकि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बात हक है, ठीक है, और उसकी बात पूरी पूरी हिकमत पे मबनी है और उसी में खैर है। ये नहीं कि मेरी और आपकी अकलें कोई खैर की बात को ज्यादा सोच सकती हैं और ज्यादा समझ सकती हैं। और ये भी याद रखिए, मर्द हों या औरतें, सब अल्लाह ही की मखलूक है। कोई ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला किसी एक के साथ ज्यादती करे, जैसे अल्लाह ने उसको बनाया वैसे ही उसको भी बनाया। तो अल्लाह, दोनों ही अल्लाह की मखलूक है। तो ये भी कभी ना समझिएगा कि अल्लाह ताला ने पता नहीं किसी एक फरीक के साथ ज्यादती कर दी। और औरतों को तो बहुत ही ज्यादा ये गिला शिकवा रहता है कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, ठीक है? तो देखते हैं आज की आयत को। पहली आयत जो है, ये वो आयत है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबाए निकाह हमें तिलावत फरमाया करते थे। आपने सूरह आले इमरान में भी एक आयत पढ़ी थी ना, एक आप सूरह अज़ाब में भी पढ़ेंगे, कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबाए निकाह में पढ़ते थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक्का तुक़ातिह, ये जो आपने सूरह आले इमरान में पढ़ी थी। और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये आयत भी बड़ी अहम है, और वहाँ पे भी तकवा के ऊपर बात है, और यहाँ पे भी तकवा के साथ ही बात है। और ये आयत ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबाए निकाह में पढ़ा करते थे, और खुतबों में भी ये आयत तिलावत किया करते थे, यानी जैसे जुमे का खुतबा, ईद का खुतबा। तो इससे आपको थोड़ी सी अहमियत पता चलेगी कि आयत नंबर 1 की अहमियत कितनी है, ठीक है? तो इसकी अहमियत को जान के आप ये फिर आयत पढ़ें, सही है ना? ताकि आपको पता चले कितनी इंपॉर्टेंट थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इसका रिमाइंडर दिलाया करते थे टाइम टू टाइम, ठीक है? तो बड़ी जामे आयत हम देखने जा रहे हैं। या अय्युहन्नास, ए लोगो। अब ये पिछली देखें, सूरा खत्म हुई या अय्युहल्लज़ीना आमनू पे, अब है ए सारी इंसानियत। ये पैगाम पूरी इंसानियत के नाम है, सिर्फ ईमान वालों के लिए नहीं, सारी इंसानियत, क्योंकि अल्लाह ताला तो सबका ही रब है ना। तो अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को खिताब फरमाया है, या अय्युहन्नास, या अय्युह का बात है, ये भी निदा के लिए आता है, पुकारने के लिए आता है। लेकिन जब इसके आगे अलिफ लाम से कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो फिर या अय्युह आता है, अगर अलिफ लाम से नहीं शुरू हो रहा तो फिर या आ जाता है, फिर जैसे या मोहम्मद, ठीक है? तो या अय्युहन्नास, ए लोगो, क्या लोगों को कहा जा रहा है? पूरी इंसानियत तुम्हारी तरफ अल्लाह का पैगाम है, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने रब से, अपने रब का तकवा इख्तियार करो। मैंने आपको तकवा का बताया ना, क्या चीज होती है तकवा? तकवा यानी अल्लाह ताला की नाराजगी से बचने के लिए गुनाहों से दूर रहा जाए, और अल्लाह को राजी करने के लिए, सवाब लेने के लिए नेकियों की तरफ दौड़ लगाई जाए। कोई नेकी ऐसी ना हो कि इंसान उसको छोड़े, हर नेकी की तरफ ये हिर्स होनी चाहिए, इस लालच के साथ बढ़े कि इससे भी अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा, इससे भी मुझे अल्लाह सवाब देगा, और हर गुनाह से इस वजह से दूर हो, इसलिए नहीं कि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, शराब पीनी है सेहत के लिए अच्छी नहीं है इसलिए मैं शराब नहीं पीता, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने हराम कर दिया, इसलिए नहीं कि मुझे ये चीज, अब मैं मास्क इसलिए पहन रही हूं कि मैंने जरासीम से बचना है, इसलिए कि भाई मेरा अल्लाह इससे राजी हो जाए कि मैं पर्दे के अंदर जाऊं। तो यानी आप ये देखेंगे, तकवा ये नहीं है कि किसी भी बुरे काम से बचना या किसी भी नेकी को करना इसलिए हो कि आप उससे कोई दुनियावी फायदा चाहते हैं, बल्कि इसलिए होना चाहिए कि अल्लाह की रजा इसमें, या अल्लाह के अजाबों से बचने की खातिर। इत्तकू रब्बकुम, इत्तकू क्यों, अल्लाह से क्यों तकवा इख्तियार किया जाए अल्लाह का, क्योंकि वो रब है तुम्हारा भाई, वो डिजर्व करता है कि तुम उसका तकवा रखो अपने दिल में। और रब कौन होता है, मैंने आपको शुरू से ही बताया, मालिक, खालिक, रोजी रसा, पालने वाला, सस्टेनर, कायम रखने वाला। देखो, अगर कोई काफिर अल्लाह को नहीं भी मानता तो वो ये जरूर मानता कि कोई मुझे रोजी देने वाला है, जानवर भी उसको पहचानता है जो उसको रोटी डालता है, तो इंसान तो फिर भी इंसान है जिसको अल्लाह ने अक्ल दी हुई है, वो जरूर कहता है कि हाँ मुझे कोई रोजी देने वाला है, मुझे कोई खिलाने वाला है। अब वो चाहे अल्लाह को ना समझे, किसी और को समझे, वो अलग बात है, लेकिन हर एक की कोई ना कोई एफिलिएशन, कोई ना कोई उसके जज्बात, मोहब्बत उससे होती है जो उसको खिलाता पिलाता है। तो अल्लाह तुम्हारा पालने वाला है, सिर्फ खिलाया पिलाया नहीं, वो तुम्हारा पालने वाला है, और पालने में सब कुछ आ जाता है। अब देखिए, एक माँ बच्चे को पालती है ना, तो क्या उसको सिर्फ फीडर पिलाती रहती है? नहीं, वो उसका डायपर भी चेंज करती है, वो उसको गर्मी सर्दी से भी बचाती है, वो उसके जरासीम से भी बचाने की वो करती है, वो उसकी सफाई सुथराई का भी इहतमाम करती है, वो उसकी निगहदाश्त भी करती है, तो कितने सारे काम उसमें आ गए। रब तुम्हें पालता है, परवान चढ़ाता है, थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें बड़ा करता है, उस रब का तकवा इख्तियार करना जरूरी है, तुम उसकी रजा हासिल करने का इहतमाम करो, ये जरूरी है, ये जरूरी है कि तुम उसकी नाराजगी से बचो, देखो वही तो तुम्हें पालने वाला है। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने पैदा किया तुमको किस तरह, मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक जान से पैदा किया उसने तुम्हें, यानी इंसानों तुम्हारा ओरिजिन जो है ना, इसीलिए पूरी इंसानियत को कहा गया, सिर्फ मुसलमानों तुम नहीं आदम अलैहि सलाम से पैदा हुए, बाकी काफिर या कोई और से आए, नहीं, सब के सब तुम एक आदम की औलाद, एक जान से पैदा हुए। इससे हमें ये बहुत बात समझ आई कि इंसान बंदर से नहीं आगे इवॉल्व होके इंसान बना, कि पहले बंदर होते थे, फिर वो बनते बनते आगे तरक्की करते करते एक दिन इंसान बन गए, यही आज कहते हैं ना साइंस के अंदर, यही थ्योरीज निकाली हुई है ना, तो आज क्यों नहीं बंदर इंसान बन जाते, कोई चीज भी नहीं इंसान बनती, जो जो है वैसे ही रहता है, आज भी इवॉल्व हो जाए ना वो। अल्लाह ताला फरमाते हैं एक जान से पैदा किया, वह खलक मिनहा ज़ौजहा, और पैदा किया उससे उसका जोड़ा यानी बीबी हव्वा को, आदम अलैहि सलाम की पसली से पैदा किया, वो सो रहे थे, जब सो के उठे तो अपने पास अपनी बीवी को पाया, तो उससे मानूस हो गए, उससे मानूस हो गए, अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम के दिल को बहलाने के लिए हज़रत हव्वा को बना दिया, अल्लाह ने आदम अलैहि सलाम के लिए किसी मर्द को नहीं बना दिया, आप ये बात नोट करें कि अल्लाह ने मर्द के लिए औरत को बनाया, मर्द के लिए अल्लाह कोई मर्द भी बना सकता था कि आदम जैसा ही एक और आदम बना देता, तो मर्द से मर्द की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, और ना ही मर्द से मर्द की जो जिनसी जरूरत है वो पूरी हो सकती, ये औरत ही को अल्लाह ने बनाया कि जो मर्द के साथ जोड़ा बनती है, जो आज जोड़े बनाए गए हैं इस आयत की रूह से भी वो अननेचुरल है, एबनॉर्मल है, वो नॉर्मेलिटी नहीं है, ये जोड़ा बन ही नहीं सकता, मर्द का मर्द के साथ या औरत का औरत के साथ। तो यहां से हमें पता चला कि उसका जोड़ा बनाया अल्लाह ने किसके साथ, हवा के साथ, औरत के साथ, वबस्सा और फैला दिए मिनहुमा उन दोनों से रिजालन कसीरम वनिसा, बहुत सारे बेशुमार मर्द और औरतें। वो दो थे, उनसे अल्लाह ताला ने कितनी इंसानियत को पैदा फरमा दिया कि देखें आज अगर बीबी हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम आ जाएं तो वो कितने हैरान हो जाएंगे, कितनी मखलूक है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ह्यूमंस। तो ये उनकी ही औलाद है सारे, चाहे वो काला है, चाहे गोरा है, चाहे कोई भी जुबान बोलता है, चाहे वो चपटी नाक वाला है या सीधी नाक वाला है, चाहे वो किसी भी कबीले कुंबे कौम उससे ताल्लुक रखने वाला है, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखने वाला है, वो सब इन्हीं एक आदम और हव्वा की औलाद। अब ये बताने से हमें क्या पता चलता है, बहुत सारी बातें हमें समझ में आती हैं, और वो ये कि जब भी इंसानों को देखो तो ये बात याद रखो कि हमारे अम्मा और अब्बा एक ही थे, तब आपको उससे नफरत दुश्मनी ये नहीं पैदा होगी, बल्कि दिल के अंदर खैरख्वाही पैदा होगी। ठीक है, जब देखें आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं कि आपको पता चलता है इसके और हमारे परदादा एक ही थे, तो कितना वो अपना लगने लगता है, कितना वो अच्छा लगने लगता है, कितनी उससे खैरख्वाही और हमदर्दी हो जाती है। यहाँ पे तो लोग एक बरादरी वालों के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं, अच्छा आप फलां बरादरी से, हम भी उससे, तो फौरन उनके साथ ऐसे शीरो शक्कर हो जाते हैं कि तो हमारे अपने हैं। और कहाँ हमारे तो सबके वालिदैन एक ही हैं, हमारा ओरिजिन सेम है। इससे आपस के अंदर कितनी हमदर्दी खैरख्वाही के जज्बात होने चाहिए, और जब खैरख्वाही होगी तभी आप किसी को खैरख्वाही वाला पैगाम भी पहुंचा सकेंगे ना। नफरतों के साथ ये दीन का पैगाम नहीं आगे जा सकता, नफरतों के साथ, कीनों के साथ, दुश्मनियों के साथ, ये ऐसे वैसे इनके साथ, फिर ऐसे जज्बात रखते पे आप कैसे किसी के साथ खैरख्वाही कर सकते हैं, कैसे किसी को वो पैगाम दे सकते हैं जो कि अल्लाह ताला ने आप तक पहुंचाया। तो ये समझना चाहिए कि ये हमारे अपने ही हैं, क्योंकि हम एक ही वालदेन की औलाद हैं। और दूसरी बात ये कि देखें जब पता चल जाता है कि एक ही वालदेन थे, तो यहां से अल्लाह ताला ने जड़ काट दी रेसिज्म की, रेसिज्म खत्म। आप चाहे किसी रंगो नस्ल से हैं तो एक ही माँ बाप की औलाद ना, माँ बाप के बच्चे होते हैं, कोई एक बच्चा ज्यादा गोरा होता है, कोई कम होता है, तो यहाँ पे सारे जब एक ही औलाद है तो फिर किस बात की बर्तरी, किस बात की एक दूसरे के ऊपर ये कहना कि हम उससे ज्यादा बढ़ के हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा खानदान इससे ज्यादा आला है, सिर्फ इसलिए कि हम जो जुबान बोलते हैं वो इससे ज्यादा मतलब अच्छी जुबान है, खुद ही बना ली अच्छी जुबानी भी, और ये तो कमतर हैं और हम ज्यादा हैं, या खुद ही निकाली है ये तरीके, और या हम फलां जगह के रहने वाले हैं इसलिए हम आला हैं, हमारा ताल्लुक फलां नस्ल से है इसलिए हम आला हैं, या हम बहुत अमीर हैं इसलिए हम आला हैं। ये सारी चीजें खत्म हो गई ना, तुम तो सारे ही एक ही माँ बाप की औलाद हो, फिर आला किस बात पे हुए? आला होने का सिर्फ एक वजह हो सकती है, सिर्फ एक रीजन हो सकता है, और वो है तकवा, कि जिसमें तकवा जितना ज्यादा होगा वो उतना ही दूसरे से ज्यादा बढ़ के होगा। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अतकाकुम, तुम में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा तकवा वाला है। तो आप मुझे बताएं आज क्या ये मयार है? कुरान की आयत ये कह रही है, और हमारे मयार क्या है आला और बढ़ के दूसरों से होने के, कि हमारे पास पैसा बहुत है, या हम उर्दू बोलने वाले हैं, या हम पंजाबी बोलने वाले हैं, या हम पश्तो बोलने वाले हैं, या हम गुजराती बोलने वाले हैं, या हम क्या बोलने वाले हैं, तो हम इसलिए सबसे आला हैं और हमारी बरादरी भी सबसे ऊपर है, और अपनी बरादरी के किस्से कहानियां, और दूसरों को ना ये तो बड़ी घटिया बरादरी के हैं। आपको पता है ये हिंदुओं के अंदर चीजें हैं, ये बरादरियों की बेस के ऊपर फखर करना, कोई ब्राह्मण है तो वो शूद्रा को अपने से इतना घटिया और नीचे समझता है, वो कहता है ये भगवान के पता नहीं पैरों से पैदा हुआ हुआ, और हम आला नस्ल है, हम तो पता नहीं क्या, हमें भी उनके साथ रहते रहते ना तो हमारे अंदर भी ये चीज आ गई कि हम कुछ को किसी का किसी कबीले से होना, किसी बरादरी से होना, ये उसके आला होने की निशानी नहीं है। बरादरी तो अल्लाह ताला ने नामों के लिए बनाई कि आपकी एक पहचान हो, जैसे आपका नाम है वो आपकी पहचान है, इसी तरह आप किस खानदान से आ रहे हैं ये आपकी एक पहचान है। इसकी बेसिस पे हमने सोच लिया हम सबसे आला है, हमने किसी और में रिश्ता भी नहीं करना क्योंकि हमसे आला थोड़ी है कोई, सब हमसे घटिया है, नीचे है। यहाँ पे तो बताया गया तुम सारी एक ही माँ बाप की औलाद हो, अगर वो घटिया तो फिर तुम भी घटिया, और अगर तुम आला हो तो वो भी आला है। तो देखो हमारे आज के मयार, मुझे ना इतना जब भी ये सूरा पढ़ाने लगती हूँ एक बात का इतना दुख होता है कि अभी मैं आपको बहुत दफा कहूंगी कि जमाना जाहिलियत में ऐसा होता था, ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि मैं जमाना जाहिलियत की बात नहीं कर रही, ये तो आज की बातें हैं, यानी गोया हम आज भी जहालत में रह रहे हैं। इस्लाम आ गया, हाँ इस्लाम 1400 साल पहले आया था, और उसके बाद लोगों ने अपने आप को जहालत के अंधेरों से निकाला था, लेकिन हम तो दोबारा गर्क हो गए उन्हीं अंधेरों में, हमने नहीं उन चीजों को छोड़ा, हमने उनको मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है। और आप बहुत सारी चीजें देखेंगे, और ये सिर्फ कुरान में पढ़ने के लिए ही है, क्लासों में नंबरें लेने के लिए, रटने के लिए तर्जुमे, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो हम फिर वो ही होते हैं जो हम पहले से थे, उन्हीं अंधेरों के अंदर वो ही हमारी बातें, वो ही हमारा माइंड सेट कि नहीं ये तो घटिया है। क्या सीखते हैं हम फिर कुरान से, क्या हमारे सर्टिफिकेट हैसियत रखते हैं कि अगर हमारे दिमागों से ये चीज नहीं जाती, चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो, मालदारी की बेसिस पे हो, स्टेटस की बेसिस पे हो, बोलने चालने की बेसिस, तो आज देखें दुनिया दुनिया इस मसले से गुजर रही है, और अभी तक इस चीज को वो खत्म नहीं कर पाए कि ये रेसिज्म ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ कलर रिलीजन रेस, ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए वो नहीं कर पाते। आज भी देखें कि हाँ मसला है हमारे पास, तो ये आयत उतार के ये मसला ही खत्म कर दिया गया, और जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल्विदा में फरमा दिया किसी काले को गोरे पे, किसी को गोरे को काले पे, किसी को अरबी को अजमी पे, किसी अजमी को अरबी पे कोई फौकियत हासिल नहीं है, फौकियत है तो सिर्फ तकवा की बुनियाद पे, वो तकवा वाला चाहे नौकर है आपका वो आपसे बढ़ के है, वो तकवा वाला चाहे झोंपड़ी में रहता है वो आपसे बढ़ के है, अगर आपके अंदर तकवा नहीं है तो। वो कोई भी जुबान बोलता है वो चाहे काले रंग का है, क्या हजरत बिलाल काले रंग के नहीं थे तो नबी अलैहिस्सलाम की मजलिसों में नहीं क्या बैठते थे, वहीं पे बड़े बड़े सरदार बैठते थे, वहीं पे वो बैठते थे, क्या उनको बाहर बिठा के रखते थे, नहीं तुम तो नौकर हो जाओ। हालांकि उस सोसाइटी में तो इतना गुलामों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी, इतना बुरा सलूक था, आप सोच ही नहीं सकते, उनको भेड़ बकरियों जानवरों की तरह समझते थे, कहाँ उनका स्टेटस रेज किया गया, बराबर का स्टेटस दिया गया। हम तो आज अपने नौकर को अपने बराबर नहीं समझते, गुलाम तो दूर की बात है, गुलाम तो खरीदा होता था ना, हम तो फिर भी नौकर हैं, ये नहीं है, ये गुलाम नहीं है, ये हमारी मिल्कियत नहीं है, ये नौकर हैं, हम उनको अपने साथ नहीं बिठाते, हम उनको अपने बराबर नहीं खाना खाने देते, अपने बर्तन नहीं यूज करने देते, ये नौकर हैं। अल्लाह हु अकबर, तो तुम्हारा तो कोई भी फर्क नहीं है, तुम तो एक ही माँ बाप की औलाद हो, अब इसके बाद फिर क्या हमारा माइंड सेट होना चाहिए। तो इस आयत को समझें और इसको अप्लाई करें, और ये जो माइंड सेट लेके हम इंडो पाक के मुसलमान एक माइंड सेट के ऊपर है ना, बर्तरी के बर्तरी, बस हम तो पैदाइशी लिहाज से ही ऊपर हैं, क्योंकि हमारे ये जो वॉट एवर रीजन्स, उसको खुदा के लिए निकालें, और ये नस्ली इलाके की और लिसानी बुनियादों पे जो भी आपके जहन के अंदर अपनी अपने आप को ऊपर और करने की जो है ना, इस सोच को खत्म करें, ठीक है। आप एक माँ बाप की औलाद हैं, देखें आदम अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, आपने देखा था ना, मिराज भी उनको एक तरफ देखते थे तो खुश होते थे, एक तरफ देखते थे तो रोते थे। इस तरफ उनके वो बच्चे हैं जो कि ईमान वाले, जो आगे बढ़ गए, एक तरफ देखते तो रोते। आप देखो, हम अपने बच्चों के लिए इतने परेशान रहते हैं, इतने फिक्रमंद रहते हैं, उनके लिए रोते हैं। हाँ, इनका ये ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ईमान ना चला जाए, ये ना हो जाए। उनकी तो सारी ही औलाद है ना, सब उनके ही बच्चे हैं, तो उनको भी कितनी तकलीफ है। ये वाले मेरे बच्चे कि जहन्नुम में चले जाएंगे, और एक तरफ को देखते हैं तो ये जन्नत में जाने वाले बच्चे, तो उनके लिए सब सेम है। लेकिन देखो आगे जाके लोगों ने कैसे एक दूसरे के लिए ऐसे जज्बात पाल लिए जो खत्म ही होके नहीं देते। इन मुल्कों में अपनी तरह की रेसिज्म है, हमारे मुल्कों में अपनी तरह का रेसिज्म है। और फिर औरत कोई घटिया मखलूक नहीं है, यहां से पता चला औरत का तो वजूद मर्द से ही निकला है, वो घटिया कैसे हो गई? जैसे औरतों को पहले जमानों में, मिडीवल वक्त में, जब आप कोई देखते हैं इस तरह के इन लोगों के, वो क्रूसेडर्स के जमाने की या इस तरह की वाइकिंग्स के, उसमें आप हिस्ट्री उठा के देखें, आप कभी पढ़ते हैं, तो जाहिर है इन लोगों के पास तो इस्लाम नहीं था। वो औरतों को इस कदर घटिया समझते थे कि यानी औरत की कोई वैल्यू नहीं थी। तो हालांकि औरत का बताया गया वो मर्द का ही हिस्सा है, इसीलिए मर्द मायल होता है ना औरत की तरफ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब दूसरी दफा क्यों ये बात कही गई? देखें, जो आप अहकामात आगे पढ़ने जा रहे हैं ना, जहन में रखिएगा, मैंने आपको बताया कि वो खानदानी जिंदगी से मुतालिक है। अब चाहे आगे सिला रहमी की बातें आ रही हैं, विरासत की बातें आ रही हैं, यतीमों की बातें आ रही हैं, कमजोर औरतों की बातें आ रही हैं जो बेवा हैं या जो वैसे ही कमजोर हैं, अपने हक खुद नहीं ले सकती। अब जो ये फैमिली लाइफ होती है ना, इसके जो भी कवानीन दिए जाएंगे उनको अगर कोई तोड़ता है, तो ना तो कोई ऐसी अदालत है, ना कोई पुलिस है, ना कोई पहरे लगा सकता है आपके ऊपर कि आके आपको चेक करता रहे, आप यतीम के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, आप विरासत में डंडी तो नहीं मार रहे, आप ये आदमी है तो वो औरत के साथ कैसा सलूक कर रहा है, ये कोई आके इसके ऊपर आपको पकड़ेगा नहीं। कोई इस तरह की मुल्कों के अंदर कोई ऐसी चीजें नहीं है। इन कवानीन को वो ही ओबे करेगा जिसमें अल्लाह का डर होगा, और जिसमें खुदा खौफी नहीं है ना, उसके लिए कुछ भी ये अहकामात कोई भी अहमियत नहीं रखते। नहीं क्या? क्योंकि यहाँ पे इन जगहों पे जुल्म व ज्यादती आसान भी बहुत है, तो पकड़ने वाला जो कोई नहीं है, को पूछने वाला ही नहीं है, वो खुद इतने, कोई यतीम है, कोई बेचारी बेवा औरत है, कोई मिस्कीन औरत है, वो इन्होंने क्या पूछना है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ये हमारा क्या कर सकते हैं, कहीं जाके किसी अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे तो क्या कर लेंगे, इनके पास क्या प्रूफ है। तो उस वक्त अल्लाह कहता है वो कोई यतीम, कोई मिस्कीन, कोई ऐसा पिसा हुआ तबका अपना हक खुद नहीं ले सकता, लेकिन याद रखना एक अल्लाह की जात है, उससे डर जाओ। पहले का इत्तकु रब्बकुम, अब कहा इत्तकुल्लाह। पहले अल्लाह ने अपनी रबूबियत का वास्ता दिया इंसानों को कि देखो अल्लाह तुम्हारा रब है, इस वास्ते तुम उससे डरो, इस वास्ते तुम उसको राजी करने की कोशिश करो, इस वास्ते तुम गुनाहों से बचो क्योंकि वो तुम्हारा रब है। अब कहा अल्लाह, वो जो इबादत के लायक है, रब में ना शफकत है और इसमें जरा यानी रोब है, वो तुम्हारा रब और वो तुम्हारा अल्लाह है, और वो है अल्लादी, वो जात है, तसअलूना बिही, तुम एक दूसरे से सवाल करते हो उसके नाम पे। जब भी कोई किसी को किसी से काम कराना होता है तो कैसे करता है, अगर कोई नहीं भी सुन रहा उसकी बात तो वो बंदा क्या कहता है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें उस रब का वास्ता है, तुम ऐसे वास्ते देते हैं ना, तो तुम उसका नाम ले लेके उसके वास्ते दे दे के अपने काम निकलवाते हो, लेकिन उसको भी तो याद रखो, उसके नाम के ही वास्ते करते हो ना तुम। वल अरहाम, और रहमों के बारे में भी अल्लाह से डरो। इत्तकुल्लाह, जिसने रहम बनाए हैं, ये रहमी रिश्ते बनाए हैं, रिश्तेदारियां बनाई हैं, यानी मतलब अरहाम से मुराद कौन से हैं, जिनको हम कहते हैं खूनी रिश्ते। सीधी सीधा इसका सिंपल जो आपको मैं बताऊं वो ये है, खूनी रिश्ते। खूनी रिश्ते कौन से होते हैं? खूनी रिश्ते के अंदर आपके वालदेन का साथ है, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, खाला मामू, चचा फूफी और उनके बच्चे आ गए, दादा नाना नानी दादी, ये सब चीजें रहमी रिश्ते हैं। इनको हम खून के रिश्ते अपनी जुबान में बोलते हैं। इनके बारे में भी अल्लाह का डर रखो, यानी इनको तोड़ने से बचो। और दूसरा मतलब है कि रिश्तेदारी के नाम पे भी तुम एक दूसरे से हक मांगते हो या हक जिताते हो कि जो है ना आपका मेरे साथ ये रिश्ता है, तुम्हारे मैं तु, तुम्हारे मैं तुम्हें इस रिश्ते का वास्ता देती हूँ कि मैं तुम्हारी बहन हूं, इस वजह से मैं तुम्हें ये कहती हूँ। ये भी तो हम वास्ते देते हैं ना। तो दोनों ही मतलब हो गए कि अल्लाह से डरो जिसके नाम के ऊपर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और रहम के रिश्तों के बारे में, और दूसरे ये कि रहम के रिश्तों से भी तुम लेके और उनके जरिए भी तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। तो देखिए ये जो अब यहाँ पे आ गया ना रिश्तेदारी की बात, ये है वो चीज जो मैं कह रही हूँ आपको कि माशरे में अगर आप सुकून चाहते हैं तो रिश्ते नाते मजबूत होने चाहिए, खानदानी जिंदगी मजबूत होनी चाहिए, और रिश्तेदारियां निभानी इंसान को सबसे ज्यादा मुश्किल काम लगता है। इसलिए कि रिश्तेदारों से इंसान को तकलीफ भी पहुंचती है, उनके साथ जाहिर है उठना बैठना, उनके साथ मेल जोल, उनके साथ हर वक्त का मिलना जुलना, तो उनसे इंसान की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा होती हैं कि ये जी हमारे रिश्तेदार हैं, इनको तो ये करना ही चाहिए, और जब वो नहीं करते तो फिर बहुत गिले शिकवे और रिश्तेदारियां बार बार टूट भी जाती हैं। दूसरी बात ये हो जाती है कि रिश्ते नाते होने की वजह से इंसान अपना हक जताता है, और दूसरा जब इसको नहीं पहचानता तो फिर भी वही बात हो गई कि फिर इंसान दूसरा नहीं इस चीज का पास रखता। तो इसमें गिले शिकवे शिकायतें ये सब चीजें बहुत होती हैं। और आप देखें तकवा के बाद यहाँ पे रिश्तों को जोड़ने के बाद एक और बात आई, ठीक है वो बीच में आई है कि मखलूक जो है ये सारी जितनी भी यानी इंसानियत है ये एक माँ बाप से पैदा हुई, और उसके बाद यानी एक चीज आपके जहन में ला दी गई, उसके बाद ये जो स्मॉलर यूनिट है ना खानदान का, इसको संभालना जरूरी है। अब रिश्तेदारी निभानी कैसे होती है और अगर ना निभाई जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हमसे नहीं होता, ये हमारे रिश्तेदार तो बड़े ही बुरे हैं, क्योंकि ये तो हमारे साथ ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, फलां वक्त में ये किया फलां वक्त में वो किया, इनको तो देखो फलां के रिश्तेदार कितने अच्छे, हमारे तो बहुत बुरे हैं। अमूमन ये होता है हमारा। तो पहली बात ये कि अगर ना निभाए रिश्ते क्या फर्क पड़ता है इससे, तो आपको मैं एक हदीस बताना चाहती हूँ जिसके बाद आप खुद फैसला कर सकते हैं रिश्तेदारी निभानी है या नहीं निभानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है कि कतई रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। बुखारी की हदीस है, रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। पढ़ते रहे नमाजें, रोजे रखते रहे, आप जो मर्जी करते रहे, अगर आपने इस हुक्म को तोड़ा है तो वो याद रखिए जन्नत में नहीं जाएगा। बाज दफा ऐसे आदमी होते हैं जो अपनी बीवियों को रोकते हैं, तुमने अपनी माँ से नहीं मिलना, तुमने अपनी बहन से नहीं मिलना, तुमने अब वो सोचते हैं कि अब ये हमने शादी कर लिया तो अब ये औरत हमारी मिल्कियत हो गई, अब हम जो मर्जी इसको कर दें। और ये समझना चाहिए कि कतई रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। खुद को चाहे कतई रहमी करें नहीं करें, आप अपनी बीवी के रिश्तों को तोड़ रहे हैं तो आपका भी क्या अंजाम होगा? रिश्तों को तोड़ना इतना सख्त बड़ा गुनाह है, और जो इंसान ये हुक्म दे रहा है, अल्लाह ने हुक्म दिया रिश्ते को जोड़ो, ये अल्लाह का हुक्म है। ताल्लुकात को मत बिगाड़ो। यहाँ पे वला अरहाम का मतलब ये क्या, अल्लाह से डरो इस मामले के अंदर, क्योंकि इन इनको काटने में अल्लाह से डरो। और एक बंदा धड़ल्ले से कह रहा है कि तुमने नहीं मिलना, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, तो वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम जो है ना, रहम ये यूट्रस को कहती है रहम, ठीक है, ये शाख है, जो शख्स इससे मिले मैं इससे मिलता हूँ, और जो इससे कता ताल्लुक करे मैं उससे कता ताल्लुक करता हूँ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब आप देखें जी, रहम ना कयामत के दिन ये खड़ा हो जाएगा और ये कहेगा अल्लाह इन्होंने मुझे तोड़ा था, तो अल्लाह ताला कहेगा कि जिसने तुझे तोड़ा मैं उसको तोड़ता हूँ, जिसने तुझे जोड़ा मैं उसको जोड़ूंगा। उस दिन यानी इस रहम की बेस के ऊपर भी फैसले होंगे। जी हाँ, और इसको निभाने का क्या फायदा है? इसको निभाने का ये फायदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको ये पसंद हो कि उसकी रोजी में फराखी हो और उसकी उम्र लंबी हो तो उसको चाहिए कि सिला रहमी करे। जी अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी रोजी बढ़े, आपकी उम्र लंबी हो, तो सिला रहमी करें। इसी तरह बाज़ औरतें हैं वो मर्दों को रोकती हैं सिला रहमी करने से। तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, बहन भाई को छोड़ दो, बस मेरे होके रहो, मेरे मेके वालों से मिलो, अब तुमने उनसे नहीं मिलना। तो ये वो क्या कर रही हैं, खुद सोच लें फिर। और इससे भी एक और ज़्यादा खौफनाक हदीस है जो सुने तो इंसान सोचता है कि इट्स नॉट वर्थ इट कि ये हम करें, इस तरह के काम करें। ना कोई औरत अपने शौहर को रोके, ना कोई आदमी अपनी बीवी को रोके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई गुनाह भी, कोई गुनाह बगावत और कतई रहमी से ज्यादा इस बात का अहल नहीं है कि अल्लाह इसकी वजह से दुनिया में भी सजा दे और आखरत में भी आखरत के अजाब में को भी बतौरे जखीरा रख ले, जखीरा करके रख ले आखरत में भी उसके लिए अजाब, यानी वो उसके लिए तैयार है वहां पे, और दुनिया में भी अल्लाह सजा देता है। दुनिया में ऐसा नहीं है कि दुनिया में बच जाओगे। बाज लोगों को दुनिया की सजाओं का ज्यादा डर होता है, आखरत का नहीं इतनी परवाह होती। तो ये देख लें कि ये वो गुनाह है कि दुनिया में भी बचोगे नहीं, दुनिया में भी इंसान के ऊपर मुसीबतें, परेशानियां, मसाइल, एक के बाद एक मसला आ रहा है। तो उस वक्त देखना चाहिए कि या अल्लाह कहीं मैंने कोई रिश्तेदारियां तो नहीं काटी, या मैं अपने शौहर को तो नहीं कहती कि आप रिश्तेदारियां काटें। और अब ये भी जानना जरूरी है कि सिला रहमी होती क्या है, किस तरह की जाती है। ये नहीं सिला रहमी होती कि आप कोई आपसे अच्छा करे आप इससे अच्छा करें, ये तो अदले का बदला ही है ना। ठीक है, उससे तो सारे ही अच्छा करेंगे। सिला रहमी ये है कि जो आपसे कतई रहमी करे उससे भी आप सिला रहमी करें, ये असल सिला रहमी। यानी जो आपके साथ अच्छे हैं रिश्तेदार आपके, उनसे बनती है, ठीक है, आप उनके साथ भी अच्छे हैं, लेकिन जो आपके साथ नहीं अच्छा करते, आप उनके घर में जाके बैठते हैं वो पूछते भी नहीं, उनको परवाह भी नहीं, वो उठ के चले जाते हैं, आप बैठे रह जाते हैं वहां पे, आप कहते हैं हम ही पागल हैं, मैं ही हमेशा फोन करती रहूं, इनको कभी नहीं तौफीक होती कि ये फोन करें, क्योंकि मैं ही इनके हमेशा काम आऊं, इनको तो जब बुलाया था तो ये तो नहीं हमारे काम आए थे, और मैं इनकी दावतों को कबूल करूं, ये तो हमारी दावत को कबूल नहीं करते, ये तो हमारे घर आते नहीं, हम क्यों इनके घर जाएं, मैं क्यों उनको शादी पे बुलाऊं, इन्होंने कोई बुलाया था हमें। यानी हम अदले बदले करते हैं, अदले बदले ये तो नहीं सिला रहमी होती। बात तो ये है कि उन्होंने जो मर्जी किया हमने सिला रहमी करनी है, दैट्स इट, दैट्स इट। रिश्तों को जोड़ना ये मतलब नहीं है कि आपने देखना है कि वो क्या करता है, रिश्तों को जोड़ना ये है कि इररिस्पेक्टिव वो क्या करता है, आपने भलाई करना है उनके साथ, आपने खैरख्वाही करनी है उनके साथ, आपने जब वो बीमार हो उनकी अयादती करनी है, आपने जब वो परेशानी में उनकी दिलजोई करनी है, आपने जब वो मसले में हो उनको मसलों से निकालने के लिए कोशिश करनी है, आपने उनकी मदद करनी है, जब उनको आपसे अच्छा मशवरा चाहिए आप मशवरा दें, जब उनको आपसे कोई हमदर्दी चाहिए आप हमदर्दी के लिए खड़े, ये सिला रहमी होती है। ऐसे नहीं कि आप ये क्या करते हैं हम क्या करें, अदले के बदले ही। हम तो हर चीज में अगर आप नोट करें ना तो कहते हैं पता नहीं हमारी कोई नेकी बचनी भी है कि नहीं, क्योंकि आप देखो वहां हम नेकी करते हैं जहां पे हमें या तो कोई रिटर्न करना है या कोई एक्सपेक्टेड है कि यहां से हमें रिटर्न मिल जाएगा, बस। यानी या तो हमें वो कुछ हमारे साथ भलाई कर चुका है उसका हमने बदला उतारना है, उन्होंने भी हमें हमारे साथ ये किया, हमें भी अब चाहिए ये करना, ये, या फिर हमें ये होता है अच्छा मैं अब करूंगी ना तो फिर भी ये भी कुछ ये भी मेरे साथ कुछ अच्छा करेगा, बस। और जहां पे कुछ नहीं चाहिए होता वहां पे परवाह भी नहीं होती, या जहां पे किसी ने नहीं हमारे साथ किया होता तो हमें भी क्या जरूरत है इसे करने की। अल्लाह अकबर, तो पता नहीं आधी तो हमारी नेकियां इसी तरह ना कयामत के दिन चली जाएंगी, ये तो तुमने अदले बदले किए थे। तुम्हारी तो नीयत थी नहीं अल्लाह को राजी करने की, तुम्हारी तो नीयत ही ये थी सिर्फ कि ये बस इसका बदला उतारना या ये हमें कुछ दे दे। तो ये होती है सिला रहमी, ये होती है कि आपने जोड़ के ही रखना है। जरूरी नहीं है कि आपका दिल बहुत ही उनके साथ मिला हो और बहुत ही आप की एक तबीयतें हैं और आप के एक ही मशगले हैं और आप एक ही चीजों को पसंद करती हैं और एक ही चीजों को नापसंद करती हैं। जरूरी नहीं है ऐसा, हो सकता है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो आपसे, हो सकता है आपकी कभी भी उनके साथ बात करें तो बनती ही ना हो। तो ये नहीं कहा कि जिनके साथ बनती है उनके साथ रखना है, जिनके साथ नहीं बनती। बहुत दफा ऐसा होता है एक ही घर में बच्चे होते हैं, सबकी नेचर्स मुख्तलिफ होती हैं, नहीं उनकी आपस में बनती, तो नहीं भी बनती। आप जब भी आप उनके साथ बात करें तो वो उल्टी कोई बात कर रहे होते हैं, तो तब भी आपने रिश्तों को जोड़ना है। दिमाग नहीं भी मिलते तब भी जोड़ना है, समझ आई? इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई गई यहाँ पे कि इस शर्त पे जोड़ोगे कि जब वो आपको आपका हक देंगे तो आपने भी उनको देना है। ये शर्त नहीं लगाई गई कि जब आपकी तबीयतें मिलेंगी तो तब भी आपने उनके साथ अच्छा करना है, नहीं। और जब वो आपको कोई रिस्पॉन्स अच्छा ना दे तो आपने भी डिसहार्ट होके बैठ जाना है, नहीं। ठीक है, उनकी तरफ से हकूक अदा हो या नहीं हो वो उनका मामला है। आप कि उनसे नहीं भी बनती तो तब भी रिश्ता जरूर निभाना है, और बहुत ज्यादा शीरो शक्कर नहीं भी हो रहा है लेकिन रिश्ता निभाना है। ठीक है, खैर खबर लेनी है, उनको कॉल करना है, उनके लिए जब भी उनको जरूरत हो आपने वहां पे मौजूद होना है। हमारा हाल ये होता है कि जो अमीर रिश्तेदार होते हैं या जो हमें पूछते हैं उनके तो हाल अहवाल हम भी कर लेते हैं और उनके तो जो हर काम में हम अटेंशन हो के सबसे आगे खड़े होते हैं, और जो गरीब रिश्तेदार हैं उनको पूछना भी नहीं। मुझे किसी ने एक बड़ी बड़ी एक अफसोसनाक बात बताई थी, उनके वालिद समझ ने उनको छोड़ के चले गए थे, तो वो मुझे इतने दुख से बता रही थी कि उन्होंने कहा कि उनकी खाला वगैरह उनको खाने पे बुलाते थे तो ये लोग शौक से जाते थे कि हमें भी दावत पे बुला लिए तो हमें अच्छा खाने को मिलेगा। जाहिर उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो कह रहे हैं जब वहां जाते थे तो वो सबसे पहले खाला सारे बर्तन मेहमानों के धुलवाती थी और सारी जो भी काम करवाना होता था वो करवाती थी, फिर जो खाना होता था वो देती थी। ये हमारी सिला रहमी देखें कैसी, बाज दफा दोस्तों को हम आगे रखते हैं और रहम के रिश्ते जिनका अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है। ये नहीं कहा गया दोस्तों के साथ दोस्तियां निभाना, ये नहीं कहा यहाँ पे, कहीं नहीं कहा। वो तो दोस्तों के साथ दोस्ती तो आप अपनी मर्जी से निभाते ना, आप अपनी मर्जी से दोस्त बनाते हैं, अपनी मर्जी से दोस्तियां निभाते हैं। जो नहीं दोस्त पसंद आता आप उसको छोड़ के दो ही और दोस्त बना लेते हैं, वो आपकी आपके दोस्त बनते ही वो हैं जो आपके जैसे हम ख्याल होते हैं, तो इसलिए दोस्तियां तो निभाते ही आप। लेकिन रिश्ते निभाने इसलिए मुश्किल है कि वो आपकी चॉइस नहीं है, वो अल्लाह ने जो आपके रिश्तेदार बना दिए बस वो वही है जो आपके हिस्से में आ गए, अल्लाह ने बना दिए। अब बहुत दफा हमारी नहीं बनती है तो अब हम क्या करें, लेकिन फिर भी अल्लाह के हुक्म की वजह से जब उनको आप निभाएंगे तो तभी अजर है। तो हमने ये देख के नहीं निभाने रिश्ते कि ये कैसे हैं हमारे साथ, ये क्या सलूक करते हैं हमारे साथ, ये हमसे नाइस हैं या नहीं है, बल्कि ये सोच के निभाने हैं कि अल्लाह का हुक्म है, बस दैट्स इट, अल्लाह का हुक्म है। बाज माएं अपने बच्चों को रहम के रिश्तों से दूर करती हैं, तुम्हारी फुप्पी है वो ऐसी है, तुम्हारे चाचा है वो ऐसा है, तुम्हारे ऐसा है, और बस उनसे दूर रहो। बाज लोग इस तरह बच्चों के जहनों में डालते हैं, बाज मर्द अपने बच्चों के जहनों में डाल देते हैं इस तरह के ख्याल। बाज औरतें ये कहती हैं अब तुम्हारी खाला के साथ मेरी बातचीत बंद है, तुमने भी उनसे बात करनी, आप तो फिर तोड़ रहे हैं रिश्ता। किसी जगह पे उनकी नहीं अगर बन रही किसी रिश्तेदार के साथ, लेकिन वो बच्चे का तो रहम का रिश्ता है ना, उसके जहन में कूट कूट के भर दिया कि ये तो इतने बुरे हैं, ताकि वो बच्चा जो है कभी भी उनके साथ बात ना करे, या अगर अपनी नहीं बन रही है तो उसको तो बात करने दे। लेकिन हम इस चीज के मुजरिम करार पाते हैं जिस वक्त हम रिश्तों को तोड़ने के लिए ऐसी इंस्ट्रक्शंस देते हैं और अपने बच्चों को गुनाहगार करते हैं। ये औरतों को बहुत समझनी चाहिए बातें, और देखने ये कहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बताया करते थे, खुतबों के अंदर, शादियों के उस खुतबे में, जहां पे सबसे ज्यादा नाराजगियां रिश्तेदारों की हो रही होती, हमने नहीं आना, हमारा कार्ड पे ये नाम नहीं आपने लिखा, हमें तो विद फैमिली नहीं बुलाया, हमारे साथ तो ये हुआ, हमें आपने फोन नहीं किया, हमें आपने फलानी जगह पे इनवाइट नहीं किया, तो हमने तो आना नहीं है। वहां पे कहा गया, अब कहाँ किसको पता होता है निकाह के खुतबे में क्या पढ़ा जा रहा है, सारे कहते हैं चलो जो मर्जी पढ़ा जा रहा है, उस वक्त तो दिमाग के अंदर और ही कुछ चीजें समाई होती, मैं लग कैसी रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं, मेरी लिपस्टिक ठीक है कि नहीं, वो किसको परवाह, कौन निकाह के खुतबे में क्या पढ़ा जा रहा है, अभी तो हमारे हालात देखे ना, हमें कोई रिमाइंडर रिमाइंडर ही नहीं है हमारे लिए, कितनी बड़ी बात को रिमाइंड कराया गया, कैसी जगह पे, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वहां पे जितने बैठे होते हैं कितना अल्लाह का डर होता है खुद बताएं, निकाह के मौके पे कितना अल्लाह का खौफ होता है, कितना उस रब का खौफ होता है ये बताएं। अब आप लोग तो पढ़ रहे हैं ना, आप तो याद रखेंगे ना जब ये आपके सामने निकाह के खुतबे में बात आएगी, तो आप तो ये याद रखेंगे ना कि हम एक माँ बाप की औलाद है, लेकिन उसको वर्स निकाह कहा गया जिसमें सिर्फ अमीरों को बुलाया जाता है, गरीबों को नहीं बुलाया जाता, यहाँ पे कहा गया तुम अब एक माँ बाप की औलाद हो, हदीस में आता है कुल मखलूक अल्लाह का कुनबा है, अल खल्कु अयालुल्लाह, अल्लाह का कुनबा है, ये अल्लाह को सारे ही प्यारे हैं, ठीक है, वो अल्लाह का कुनबा है, चाहे वो काफिर है चाहे मुस्लिम है, तो अल्लाह का बनाई हुई मखलूक है ना, तो लेकिन हमने कितनी तरह की बैरियर्स खड़े कर दिए, कितनी तरह की दीवारें खड़ी कर दी, ये है, वो है, वो फलां है, वो फलां है, फिर उस अल्लाह के नाम पे ही तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, उसका ही वास्ता देते हो, और फिर उसका ही तकवा नहीं इख्तियार करते, डर उसका नहीं है कोई तुम्हें, तो शादी के मौके पे भी इत्तकुल्ला है जनाब, ये नहीं कि शादी के मौके पे इत्तकुल्ला नहीं है, वहां पे जो मर्जी करो, आज अल्लाह को क्या राजी करना, आज तो शादी का दिन है ना, इन अल्लाह कान अलैकुम रकीबा, आप देख लें अल्लाह का नाम और रकीब भी है, रकाबा कहते हैं ये, रकीब ये गर्दन के पीछे की साइड को कहते हैं, और रकीब वो है जिसकी नजर गर्दन पे हो, तो अल्लाह तुम्हें वॉच कर रहा है, तुम्हारी निगरानी कर रहा है, याद रखना ये बात, वो तुमको वॉच कर रहा है, तुम पे वॉचफुल है, तब इसके बाद इंसान को कितना डरना चाहिए, देखिए इस्लाह की कितनी सारी बातें हैं इस एक आयत में, रिश्तेदारियां मजबूत हो जाएं और दिलों से कीने और बुग्ज निकल जाएं तो कितना माशरा भी प्यारा हो जाए ना, अक्सर जो गुनाह होते हैं वो रिश्तेदारियों के बीच में ही होते हैं, जब हकूक मारे जाते हैं, जब विरासतों से हक नहीं दिए जाते, जब गिले शिकवे होते हैं, जब बच्चे वालदैन के सामने खड़े हो जाते हैं, जब बहन भाई एक दूसरे से कट जाते हैं, इसीलिए तो इसको कयामत की निशानियों में से कहा गया ना, ये ऐसे खून सफेद हो जाएंगे, यानी ऐसा वक्त एक आ जाएगा, तो रिश्तेदारियां हमने निभानी है, अब जब हम कुरान पढ़ रहे हैं तो हमने तो निभानी है, अब आगे कोई निभाए ना निभाए, ठीक है ना, हम तो नहीं किसी के जवाब देना, उसने नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा भी होगा तो हम नहीं उसके, हमने तो नहीं अल्लाह के सामने उसका जवाब देना, लिहाजा हम तो वो करें जो अल्लाह का हुक्म है, बाकी उसका मामला अल्लाह की सुपुर्द है।